सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग त्रिपिटक प्रकरण में उस ज्ञानी की जो प्रवृत्ति है, जब वो कृतकृत्य हो जाता है, यदा कदाचित उसके द्वारा अज्ञानियों को प्रवृत्ति दिख रही है उसकी, उस प्रवृत्ति से ज्ञानी का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। शास्त्रीय मार्ग में उसकी जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति से कोई क्षति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी जो भी उसके द्वारा अर्थात उनके शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है, शरीर से वाणी से मन से, वो जो सब कुछ जो हो रहा है, उन सभी को साक्षी भाव से क्या है, वो देख रहा है। वो ये जानते हैं ज्ञानी कि यह प्रवृत्ति हुई है शरीर वाणी और मन की, इस प्रवृत्ति को मैं देखने वाला हूं, इस प्रवृत्ति को करने वाला नहीं हूं। साक्षी होने के कारण उनके भीतर ये भाव रहता है कि ना मैं इसको करता हूं और ना मैं करवाता हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही प्रवृत्ति दिख रही है, किंतु दोनों की प्रवृत्ति का जो है कारण वो भिन्न है। एक शरीर मन और बुद्धि में आग्रह करके क्या करता है, कर्म करता है, और एक ज्ञान में आग्रह रखता है अर्थात साक्षी में। अर्थात एक जड़ में आग्रह रखता है और एक चेतन में आग्रह रखता है। कर्म भले ही है, वो अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करेंगे सब करेंगे, किंतु अज्ञानियों का कर्म होता है वो शरीर मन वाणी में क्या है, आग्रह करते हुए वो कर्म होता है। और ज्ञानी का जो प्रवृत्ति है उस कर्म में, वो कर्म में प्रवृत्ति जो हो रही है, वो प्रवृत्ति आत्मा साक्षी में आग्रह करते हुए हो रही है। दोनों का क्या है, भिन्न है। दोनों का एक ही जगह आग्रह नहीं है, इसलिए क्या है, दोनों में कोई झगड़े की अथवा विवाद की कोई बात नहीं बनती है। भले ही एक ही कर्म है, जैसे मान लीजिए दो भाई है, दोनों का एक ही कर्म है मान लीजिए, किंतु एक अपने मां के लिए प्रवृत्त होता है और एक अपनी पत्नी के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो दोनों के प्रवृत्ति का कारण क्या है, भिन्न है। भिन्न होने के कारण कोई विवाद नहीं है, एक विषय नहीं दोनों का, विषय दोनों का क्या है, भिन्न है। एक भाई जो है अपने मां के लिए प्रवृत्त है और एक भाई अपने पत्नी के लिए प्रवृत्त है, तो एक का आग्रह किस में, मां में है, और एक का आग्रह पत्नी में है। इसलिए दोनों के प्रवृत्ति का कारण अलग अलग है, दोनों के प्रवृत्ति में आग्रह अलग अलग जगह है, इसलिए दोनों में कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, एक ही वस्तु के लिए दोनों की प्रवृत्ति होती तो समस्या हो जाती। एक ही स्त्री के लिए दो व्यक्ति प्रवृत्त होते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है, किंतु दो व्यक्ति दो स्त्री के लिए अलग अलग स्त्री में प्रवृत्त हो रहा है तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। हाँ, एक ही वस्तु में दोनों प्रवृत्त हो जाते तो समस्या बन जाती है, इसीलिए यहां पर भी कोई वाद का विषय ही नहीं है। ये बता करके फिर प्रश्न किया है 73वें श्लोक में, अथापि यो ज्ञानी कर्मिणो कलहम कुर्वाते तो विद्वत भी परिहसनीया। यदि ऐसा होने पर भी क्या है, ज्ञानी और कर्मी में यदि कलह में प्रवृत्ति होती है तो जो वास्तविक ज्ञाता लोग हैं वो उनको क्या है, हंसी आती है इन दोनों को देख करके। क्यों हंसी आती है उसका कारण बताते हैं श्लोक के द्वारा। एवं चान्योन्य वृत्तान एवं चान्योन्य वृत्तान तानभिज्ञौ बधिराविव तानभिज्ञो बधिराविव विवदेतां बुद्धिमन्तो विवदेतां बुद्धिमन्तो हसन्तेव विलोक्यतो हसन्तेव विलक्यतो। अब यदि ये दोनों विवाद करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों भी एक दूसरे की विषय में वृत्ति में एक दूसरे की वृत्ति के विषय में अनभिज्ञ है। कैसे अनभिज्ञ है, जैसे कि एक बहरा आदमी होता है ना, जिसको सुनाई नहीं देता है। अब जिसको सुनाई नहीं देता है क्या एक दूसरे की प्रवृत्ति किस कारण हो रही है, कुछ समझ में आएगा एक दूसरे को? नहीं ना आएगा। प्रवृत्त हो रहे एक जगह, परंतु जो बधिर है, जो सुनाई नहीं देता उसको, तो क्या पता लगेगा कि क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे के विवाद में जो यदि पड़ते हैं तो समझ लीजिए कि वो दोनों बधिर जैसे विवाद है। उनका कैसा है, बधिर, बधिर मतलब बधिरों का जो विवाद है, माने दो दोनों को सुनाई नहीं देता, उन दोनों में क्या है, विवाद हो रहा है। वो भी उसको बोल रहा है, ये भी इसको बोल रहा है, पर क्या बोल रहे को सुनाई दे रहा है, अभी विवाद तो हो रहा है। अब सामने वाला सोचेगा, अरे ये इसकी बात इसको सुनाई नहीं दे रही है, इसकी बात उसको सुनाई नहीं दे रही है, विवाद क्या करेंगे, जब गाली ही सुनाई नहीं दे रही तो क्या बोलेंगे, और यदि बोले तो हंसने जैसी बात हो गई ना। अरे इनको सुनाई भी नहीं दे रहा है और एक दूसरे पे झगड़ रहे, मतलब क्या है, ये तो विचित्र बात है ना। सुनाई देगा रे तब तो वो दूसरे की उसके ऊपर क्या प्रवृत्ति होगी मारने की, पर सुनाई नहीं दे रहा और बेमतलब प्रवृत्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो हास्यास्पद बात है ना। तो कहते यही है कि बधिरो इव विवदेताम, जो न सुनने वाले जिसको कान में सुनाई नहीं देता उनकी विवाद जैसी ये बात है। बुद्धिमंतो हसंती, ज्ञानी लोग क्या है उसकी तरफ देख करके हंसते हैं, विलोक क्या था देख करके हंसते हैं। अब वास्तविक बात सही है, दोनों को सुनाई नहीं देता और दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, जब एक दूसरे को बोल रहे तो क्या उसका बोध होगा, जब बोध होगा ही नहीं तो फिर गुस्से का क्या मतलब है, बात करने का क्या मतलब है, किंतु यदि बात करते हैं तो वो हास्यास्पद बात है। कुतः परिहर त्वम इति आशंक्य परिहास्यम, ये जो परिहास करते हैं ज्ञानी लोग, ये परिहास कर रहे हैं इसका कारण क्या है, क्या है, माने ज्ञानी परिहास करता है उन दोनों को, जो निवृत्त हुआ है, जो कर्म कर रहे दोनों, प्रवृत्ति हो रही है, किसी ज्ञानी की प्रवृत्ति हो रही है, तो एक ही प्रवृत्ति शरीर मन और बुद्धि में आग्रह करते हुए है, और एक ही प्रवृत्ति और एक ही प्रवृत्ति है, साक्षी आत्मा में आग्रह करके है। हाँ, प्रवृत्ति का विषय भिन्न हो गया ना, विषय भिन्न होने के कारण कोई वाद नहीं ना, इसलिए दृष्टांत दिया। दो भाई है, एक मां के कारण प्रवृत्त हो रहा है, क्या है, काम करने के लिए, और एक अपनी पत्नी के लिए काम करने में प्रवृत्त हो रहा है। भाई चलो, हमारी पत्नी का जो है पालन पोषण करना है तो काम करना पड़ेगा। और दूसरा भाई सोच रहा, नहीं मुझे मां के लिए क्या है काम करना चाहिए। तो दोनों की प्रवृत्ति का विषय क्या हो गया, अलग हो गया। तो अलग हो गया तो दोनों में कोई वाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, किंतु एक स्त्री के लिए दोनों क्या है प्रवृत्त होते, तब दोनों में वाद हो जाता है, क्योंकि प्रवृत्ति का विषय क्या एक है, परंतु दोनों की प्रवृत्ति का विषय अलग होने पर कोई वाद नहीं है। इसी प्रकार यहां पर भी ज्ञानी के प्रवृत्ति का जो है कारण अलग है। ज्ञानी के प्रवृत्ति का कारण क्या है, लोक अनुग्रह, और अज्ञानी के प्रवृत्ति का कारण क्या है, स्व अनुग्रह। स्व अनुग्रह मतलब अपने शरीर मन बुद्धि के लिए क्या है वो प्रवृत्ति है, और ज्ञानी की अपने शरीर मन बुद्धि के लिए प्रवृत्ति नहीं है। उसकी प्रवृत्ति किस कारण है, लोक अनुग्रह। तो प्रवृत्ति का विषय भिन्न होगा ना, इसलिए इनमें कोई वाद में कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कहते हैं, अब फिर प्रश्न करते हैं कि ये यदि आपस में यदि मान लीजिए विवाद करते हैं तो ये हास्यास्पद बात है। किन के लिए, ज्ञानियों के लिए। तो ये हास्यास्पद क्यों है, इस विषय में शंका करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। निर्विषय कलह कारित्वात्, अर्थात कलह करने में कोई विषय ही नहीं है। क्या है, कलह करने में कोई विषय ही नहीं। यहां पर यदि विषय होता तब कलह बनता, व्यर्थ है ना। विषय कब बनता, दोनों का विषय एक होता, अर्थात हेतु एक होता दोनों का, प्रवृत्ति का, तब कलह के लिए विषय बनता, किंतु विषय ही नहीं ना दोनों के लिए, तो बात तो प्रश्न ही नहीं। निर्विषय क्या है, निर्विषय कलह कारित्वात्, कलह के लिए कोई विषय ही नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसके लिए श्लोक बता रहे हैं, इसी को समझाने के लिए। यम कर्मेण विजानाति, यम कर्मेण विजानाति, साक्षिणं तस्य तत्त्ववित्, साक्षिणं तस्य तत्त्ववित्, ब्रह्मत्वं बुद्धितां तत्र, ब्रह्मत्वं बुद्धितां तत्र, कर्मिणा किं विहीयते, कर्मिणा किं विहीयते। देखिए, यह कर्मी न विजानाति साक्षिणम्। कर्मी जो है, कर्म अनुष्ठान करने वाला, वो क्या है, साक्षी को नहीं जानता है। किसको छोड़ करके, शरीर मन और बुद्धि को छोड़ करके साक्षी को नहीं जानता है। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी कैसा होता है, शरीर मन बुद्धि को छोड़ करके साक्षी को जानता है। तो वो न जान करके कर्म करता है, और एक जान करके क्या है कर्म करता, मतलब प्रवृत्ति होती है। तो वही कहते हैं, यम कर्मी न विजानाति साक्षिणम्। जो कर्मी साक्षी आत्मा को क्या है नहीं जानता है, जो कर्मानुष्ठान के उपयोगी क्या है शरीर है, बुद्धि है, वाणी है, इसके अतिरिक्त जो प्रत्येक आत्मा साक्षी उसको वो जानता नहीं है, किंतु तत्व ही तो जानता है। तस्य तत्वविद ब्रह्मत्वं बुद्ध्यताम, और उसको क्या है, उस साक्षी को ब्रह्म रूप में क्या है वो जानता है, कौन, ज्ञानी। तो एक जान रहा है एक नहीं जान रहा है, तत्र कर्मिणः किम विहियते, अर्थात कर्मी का क्या नुकसान है उसमें, कोई हानि तो नहीं है। एक शरीर को जान रहा है, शरीर बुद्धि मन को जान रहा है, और एक ब्रह्म को जान रहा है, तो दोनों अलग अलग ज्ञान के विषय अलग है। तो ज्ञान के विषय अलग होने के कारण क्या है, एक ब्रह्म को जान रहा है, ज्ञानी ब्रह्म को जान रहा है, तो इसको कोई कर्मी, उससे कर्मी को कोई समस्या है क्या, नहीं है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि क्या है, अलग विषय दोनों का, आपका विषय अलग, हमारा विषय अलग। दो भाई है, एक मां को जान रहा है, एक पत्नी को जान रहा है, तो दोनों के विषय अलग होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार से कोई वाद बनता नहीं, हानि नहीं है, क्योंकि दोनों के विषय अलग है। तत्र कर्मी किम विहते, इसलिए कर्मी का कोई उसमें क्या है, हानि नहीं ही है। हीयते मतलब हानि नहीं है, उसकी नुकसान नहीं है, उसके कर्मानुष्ठान में क्या बाधा है, क्या हानि है उसमें, कोई हानि नहीं है। देखिए कर्मी यम साक्षिणम, टीका देख लीजिए, कर्मी यम साक्षिणम कर्मानुष्ठान योपी उपयोगी देह वाग बुद्धि अतिरिक्तम प्रत्येगात्मानम न विजानाति। ये जो कर्मी है वो कर्मी यम साक्षिणम, जो साक्षी है उस साक्षी को क्या है, जो कर्मानुष्ठान की उपयोगी कौन, शरीर बुद्धि और वाणी, इसके अतिरिक्त क्या है, उस साक्षी को प्रत्येक आत्मा के रूप में नहीं जानता है, कौन, कर्मी। और ज्ञानी क्या है, उस साक्षी को प्रत्येक आत्मा के रूप में जानता है, ये नहीं जानता है। तत्वविदा तस्य ब्रह्मत्वे बुद्धे, तत्वज्ञानी की उस साक्षी प्रत्येक आत्मा में क्या है, ब्रह्मत्व बुद्धि होने से कर्मिणः अर्थात कर्मानुष्ठाने किम हीयते, उस कर्मी का कर्मानुष्ठान में कोई नुकसान है क्या। आप कुछ दूसरा कुछ जान रहे हैं और मैं कर्म कर रहा हूं मैं अपना, तो आप कोई दूसरा कुछ चीज कुछ जान रहे तो मुझे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप दूसरी चीजों में लगे हैं, तो आपका मेरे साथ कोई विरोध नहीं है, कोई मेरा नुकसान भी नहीं है, अलग अलग विषय है दोनों का। तो इसलिए कहते हैं उस तत्वज्ञानी के द्वारा ब्रह्म को यदि जान लिया तो उस कर्मी की उस कर्म अनुष्ठान में कोई हानि नहीं है। हां हानि होती तो दिक्कत हो जाती, जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है और उस व्यापार के कारण क्या उसको पैसा मिल रहा है, किंतु उसी व्यापार को दूसरा व्यक्ति जान रहा है। अब जानेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, अरे ये मेरे जो है, मैं जो बिजनेस में मेरा पैसा कमाने का जो तरीका है इसको यदि जान लेगा तो क्या हो जाएगा, मेरे बिजनेस पर पानी फेर जाएगा। मतलब एक ही चीज को जानने में क्या है, दिक्कत है। एक बिजनेसमैन जिस बिजनेस को करके पैसा कमा रहा है उसी बिजनेस के बारे में यदि दूसरा जानेगा तो उसको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, उसको भय होने लगेगा, अरे ये मेरे पैसे कमाने का जो तरीका कोई भी जान लेगा तो फिर ये भी क्या करेगा, वही बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो क्या होगा, नहीं कॉम्पिटिटिव, मेरे जिसमें नुकसान हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही विषय को दो व्यक्ति जानते हैं तो दिक्कत आ जाती है। किंतु ज्ञानी ब्रह्म को जान रहा है और अज्ञानी कर्म को जान रहा है, तो अज्ञानी कर्म करेगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का विषय अलग है, प्रवृत्ति का विषय अलग है। उनकी प्रवृत्ति ज्ञानी की साक्षी आत्मा में है, ज्ञानी का आग्रह साक्षी आत्मा में है, अज्ञानी का आग्रह किस में है, शरीर मन और वाणी में है। दोनों का विषय अलग है, इसलिए दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हानि नहीं है। इसलिए कह दिया कर्मिण कर्मानुष्ठाने की महीयते, उस कर्मी का कर्मानुष्ठान में क्या हानि है, कोई हानि नहीं है। हानि हो तो दिक्कत हो जाती है, परंतु हानि नहीं है। देह वाग बुद्ध्यस्त्यक्ता, देह वाग बुद्धयस्त्यक्ता, ज्ञानिनान्रित बुद्धितः, ज्ञानिनान्रित बुद्धितः, कर्मे प्रवर्तयत्वाभिर्, कर्मे प्रवर्तयत्वाभिर्, ज्ञानिनो हीयतेत्र किम्, ज्ञानिनो हीयतेत्र किम्। देखिए हानि कैसी नहीं है वो समझा रहे। देह वाग बुद्धि ही बुद्धयः त्यक्ता, ज्ञानी ने क्या किया है, शरीर है वाणी है बुद्धि है, इसका त्याग किया है। त्याग किया है क्या मतलब, जैसे किसी के बाल ज्यादा हो गए तो काट करके अलग से कर दिया, ऐसा नहीं, उसके प्रति अपना वहां से वो हट गया, यही उसका त्याग है, उसके प्रति कोई ध्यान उसका नहीं है। हाँ देह वाग बुद्धि त्यक्ता, ज्ञानी न अनृत बुद्धि था, क्यों त्याग दिया भाई उसने, शरीर वाणी बुद्धि को क्यों त्याग दिया, अनृत बुद्धि, उसमें मिथ्यात्व बुद्धि के कारण क्या उसका त्याग किया। कि तो कर्मी का तो ऐसा नहीं ना, कर्मी की शरीर वाणी और मन में मिथ्यात्व बुद्धि नहीं है, उसकी तो सत्यत्व बुद्धि है। कर्मी प्रवर्तयत्व आभी ही, आभी मतलब कि इन इंद्रियों के द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है वो मिथ्या जान करके प्रवृत्ति नहीं है, वो सत्य जान करके, और ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी है, मिथ्या जान करके। ज्ञानिनो हियते त्रकिम, जैसे कर्मी का कोई नुकसान नहीं है वैसे ज्ञानी का क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। एक सत्य मान करके प्रवृत्त हो रहा है और एक मिथ्या मान करके प्रवृत्त हो रहा है। अच्छा प्रवृत्त हो रहा है तो वो दोनों की इंद्रिय मन बुद्धि शरीर एक है क्या, नहीं, उसका शरीर अलग उसकी बुद्धि अलग, उसकी वाणी अलग इसकी वाणी अलग, इसकी बुद्धि अलग इसका शरीर अलग, तो एक अपने शरीर में मिथ्यात्व भाव कर रहा है और एक अपने शरीर में सत्यत्व भाव कर रहा है, तो दिक्कत कोई है नहीं। हाँ एक ही वस्तु में दोनों का एक भाव है, अलग अलग भाव है, तब निम्न समस्या है। क्या है, एक ही वस्तु में क्या है, दोनों का भाव अलग है, तब समस्या खड़ी है। एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति के बारे में दो बगल में खड़े हुए दो व्यक्ति कह रहा नहीं ये सत्य है, एक बोल रहा नहीं असत्य है, एक ही व्यक्ति में दोनों का क्या है, अलग अलग भाव है, तो इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर, एक कहता नहीं वो सत्य है, ये कहता नहीं ये झूठा है, तो दोनों कहेंगे सत्य दिखाओ करके, सही प्रमाणित करके दिखाओ, तो इसी के प्रमाण प्रमाणीकरण में क्या दोनों का झगड़ा चालू है, क्योंकि एक ही विषय में दोनों का अलग अलग भाव है। यहां तो शरीर दो है, शरीर दो है, अपने अपने शरीरों में अलग अलग भाव है, इसलिए वाद नहीं है। ज्ञानी को भी कोई समस्या नहीं है, अज्ञानी को कोई समस्या नहीं है। ये कह रहे ज्ञानिनो यतेत्र किम, ज्ञानी का क्या नुकसान है इसमें, ज्ञानी का कोई नुकसान नहीं है। टीका देख लीजिए, देह इति ज्ञानीना मिथ्यात्व बुद्धिया परित्यक्ता भी देह वाग बुद्धि भी कर्मानुष्ठाने ज्ञानिनो वा किम ही यते। देखिए ज्ञानी अपने शरीर मन और वाणी को क्या है, उसने त्याग दिया। किस हेतु से, मिथ्यात्व बुद्धि से, मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व के हेतु से क्या किया, मिथ्यात्व बुद्धि से शरीर मन वाणी को उसने क्या है त्याग करके कर्मानुष्ठान में क्या है वो प्रवृत्त हो रहा है। तो उस ज्ञानी की कोई हानि नहीं है, वही कह रहे परित्यक्त भी ही देह वाग बुद्धि भी ही कर्मानुष्ठाने ज्ञानिनो वा किम ही यते, उस ज्ञानी का क्या हानि है, कोई हानि नहीं है। आतो निर्विषय कलह कारिणो, इसलिए कोई यदि कलह करता है तो इनका कलह क्या है, निर्विषयक है, अर्थात कलह करने के लिए कोई विषय ही नहीं बनता है, निमित्त ही नहीं है, व्यर्थ ही क्या हो कलह है। इसलिए वो कलह कैसे है, बधिरो जैसा, बधिरो जैसा, अर्थात कलह कर रहे क्या, दो बधिर है, दोनों को सुनाई नहीं देता है, और मान लो गाली दे रहे हैं, तो गाली जब सुनाई नहीं दे रही तो गुस्सा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, गुस्सा कब होगा, सुनाई देगा तब। तो कलह कैसा होगा, ये जैसे मानो दो बधिरों का, जो सुनाई नहीं देता है, बहरे है दोनों, और दोनों का कलह है, तो दोनों का कलह हास्यास्पद है, इसी तरह है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कर्मानुष्ठानम प्रयोजन शून्यत्वात् न ज्ञानी ज्ञानी न अभ्युपगम्यते इति शंकते। अब शंका होती है क्या है, अब कर्म का अनुष्ठान जो है ज्ञानी को कोई प्रयोजन तो है ही नहीं, जैसे कर्मी को प्रयोजन है, अर्थात अज्ञानी कर्म में प्रवृत्त हो रहा है तो उसको प्रयोजन दिख रहा है, श्रावण मास कर रहा है कोई अनुष्ठान, किस उद्देश्य से कर रहा है, कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी, श्रावण मास का व्रत किया उसने, तो जो कर्मी श्रावण मास का व्रत कर रहा है वो प्रयोजन देख करके प्रवृत्त हो रहा है, और ज्ञानी को कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो कर्मानुष्ठानम प्रयोजन शून्यत्वात्, कर्म का अनुष्ठान प्रयोजन शून्य है, तो जो प्रयोजन शून्य है तो कहते न ज्ञानी न अभ्युपगम्यत, अर्थात ज्ञानी की जो है प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्या है, ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वही कह रहे हैं। उस कर्म ज्ञानी न अभ्युपगम्यत, न अभ्युपगम्यत अर्थात वो कर्म अनुष्ठान में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, स्वीकार नहीं करेगा। उसी के विषय में शंका करते हैं, शंका क्या हो गई कि कर्म अनुष्ठान कैसा है, प्रयोजन शून्य होने के कारण वो ज्ञानी कर्म का क्या है स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्या है ज्ञानी को कर्मानुष्ठान में ये आप कह रहे, वो उसकी शंका है ऐसे कि ज्ञानी को क्या है कर्मानुष्ठान में कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो जब प्रयोजन नहीं है तो फिर वो ज्ञानी कर्म को क्यों स्वीकार करेगा, हाँ ये शंका है, नहीं करना चाहिए स्वीकार कर्म का, जब प्रयोजन ही नहीं दिख रहा उसको तो कर्मानुष्ठान क्यों करे, शंका है। तो उसका उत्तर देते हैं, प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेन प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेन निवृत्ति को उपयुज्यते। निवृत्तिर को उपयुज्यते बोध हेतुर निवृत्तिश्चेत। बोध हेतुर निवृत्तिश्चेत बुभुत्सायां तथेतरा। बुभुत्सायां तथेतरा कहते जैसे प्रवृत्ति ज्ञानी के लिए क्या है उपयुक्त नहीं है, इसी प्रकार से निवृत्ति भी ज्ञानी के लिए क्या है उपयोगी नहीं है। क्या समझ में आया? जैसे प्रवृत्ति ज्ञानी के लिए उपयोगी नहीं, वैसे निवृत्ति भी उपयोगी नहीं है। तो फिर बोध हेतुर निवृत्तिश्चेत बुभुत्सायां तथेतरा। तो फिर जो है निवृत्ति में जो प्रवृत्ति है क्या है? निवृत्ति के लिए भी प्रवृत्ति है ना एक, तो निवृत्ति में जो प्रवृत्ति है वो किसका कारण बनती है? बोध का कारण बनती है। क्या है? ब्रह्म के बोध का कारण बनती है, क्योंकि ब्रह्म को जानने के लिए, आत्मा साक्षी को जानने के लिए किसी उसको निवृत्त होना पड़ेगा ना संसार से, तो उस निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो जो प्रवृत्ति है वो किसके लिए? निवृत्ति के लिए। तो ही कह रहे बोध हेतु निवृत्ति, बोध का हेतु निवृत्ति होने के कारण उस निवृत्ति में प्रवृत्ति है। अब बुभुत्सायां तथा इतरा, और जानने की इच्छा है इसलिए क्या है? प्रवृत्ति में प्रवृत्ति है। क्या है? एक साधक है, उसको ब्रह्म को जानना है, तो इस जानने के लिए क्या उसकी प्रवृत्ति है। और ज्ञानी की जानने के लिए जो प्रवृत्ति हुई थी उससे फिर दोबारा निवृत्ति है। दोनों में अंतर पड़ा ना? साधक की जानने के लिए प्रवृत्ति और ज्ञानी की क्या है? निवृत्ति है। किससे निवृत्ति हो रही? जो प्रवृत्ति होती उसमें से निवृत्ति। तो ये बोध हेतु निवृत्ति, बोध का हेतु क्या है? निवृत्ति है। अर्थात निवृत्ति के लिए एक प्रवृत्ति है और एक जानने के लिए प्रवृत्ति है। जानने के बाद निवृत्त होगा कि नहीं? जैसे साधक जानने के लिए क्या कर रहा है? निवृत्ति कर रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है ना, जानने के लिए प्रवृत्ति कर रहा है। और एक ने जान लिया इसलिए क्या किया उसने? प्रवृत्ति की निवृत्ति की। तो जो प्रवृत्ति है, एक जगह प्रवृत्ति हो रही है, एक जगह प्रवृत्ति की भी निवृत्ति हो रही है। इस विषय में कहते हैं ये दोनों में उपयोग नहीं है। एक को जानने के बाद उस जानने के लिए प्रवृत्ति कोई मतलब की नहीं है, और एक की उस ब्रह्म को जानने के लिए, जानने के लिए जो प्रवृत्त हो रहा है उसके लिए निवृत्ति भी ठीक नहीं है, उसको प्रवृत्त होना चाहिए। वही कह रहे हैं बोध हेतु निवृत्ति, बोध का हेतु क्या है? निवृत्ति है। पहले पूर्व क्या है, पूर्वार्ध में क्या कहा कि दोनों का क्या उपयोग है? प्रवृत्ति न उपयुज्यते, प्रवृत्ति का कोई उपयोग नहीं। तो फिर कहते निवृत्ति का कोई उपयोग नहीं है, तो कहते ऐसी नहीं है, प्रवृत्ति का भी उपयोग है और निवृत्ति का भी उपयोग है। तो किसका किस में उपयोग है वो बता रहे हैं। बोध में बोध का हेतु निवृत्ति है। क्या है? बोध का हेतु हाँ निवृत्ति, और जानने के लिए प्रवृत्ति हेतु है, ऐसा समझे, यही कह रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि निवृत्ति से भी क्या होता है और प्रवृत्ति से क्या होता है, दोनों से होता है, दोनों का अपना एक प्रयोजन है, तो प्रयोजन का उसका उत्तर दिया नीचे। टीका देख लीजिए, प्रवृत्ति दी, उपभोग अभावो निवृत्तो अपि समान इति परिहरति। देखिए दोनों का एक बुभुत्सा अर्थात जानने की इच्छा से और एक ज्ञान का हेतु होने से दोनों में भी क्या है, भोग का अभाव है, उपभोग अभाव। ज्ञानी और साधक, इन दोनों में भोग बनता है क्या? नहीं बनेगा, वो तो अज्ञानी में भोग बनेगा ना, किंतु ये ज्ञानी है और एक साधक है, माने एक को प्राप्त हो गया साध्य और एक साध्य के लिए प्रवृत्त हुआ, हाँ दोनों का विषय एक ही है, किंतु एक को प्राप्त हो गया एक प्राप्त करने निकला है, तो ये दोनों में भोग का क्या है, अभाव है, वही कह रहे भोग अभावो निवृत्तो अपि समानम। निवृत्ति में क्या है, भोग का अभाव है, भोग नहीं ना, दोनों में दोनों निवृत्त हो गए, एक साधक भी निवृत्त हो रहा है और ज्ञानी भी निवृत्त हो रहा है, तो एक बोध का कारण है इसलिए निवृत्त हो गया और एक प्रवृत्त हो गया, उस जानने के लिए प्रवृत्त हो गया, मतलब एक जानने के बाद निवृत्त हो रहा है और एक जानने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो प्रवृत्ति भी साधक है और निवृत्ति भी साधक है, प्रवृत्ति का भी, हाँ मतलब फल है, निवृत्ति का भी एक अपना फल है और एक प्रवृत्ति का भी अपना एक फल है, जिसने जान लिया उसको निवृत्त है, ये फल है, बोध का हेतु बन गया निवृत्ति। यदि एक बार जानने के बाद दोबारा क्या जानना है, एक बार जान लिया फिर उसी को जानने के लिए प्रवृत्ति करना है क्या, नहीं ना, तो एक बार जानने के बाद उस वो क्या होगा, वहां से निवृत्त होगा, बार बार उसी को बार बार जानना है क्या, पिष्ट पीसन जैसी बात है, एक बार पीस लिया आटा उसको क्या पीसेंगे बार बार, और उसी आटे को पीसने का मतलब क्या है, कोई मतलब है नहीं है, तो उसी क्या है, निवृत्त होना। कहते जानने के बाद उसकी निवृत्ति क्या है, उपयुक्त है, क्योंकि बार बार उसी को करना एक बेकार की बात होती है, और एक की प्रवृत्ति है वो जानने के लिए है, एक की निवृत्ति जानने के कारण है, दोनों में अंतर हो ना, जानने के कारण एक की निवृत्ति और एक की जानने के लिए प्रवृत्ति, इसलिए निवृत्ति भी उपयोगी है और प्रवृत्ति भी उपयोगी है। हाँ इतना जरूर है, दोनों में एक समानता क्या है,
साधक है वो जानने के लिए प्रवृत्त होता
है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति उपयोगी है, हाँ। और
हाँ
उसकी उसकी वहां से निवृत्ति है,
हाँ।
वो नहीं करेगा तो निवृत्ति भी उपयोगी हुई कि नहीं,
हाँ।
और प्रवृत्ति भी उपयोगी हो गई, किंतु दोनों में समानता ही देखे आइए, दोनों में उपभोग नहीं है, जैसे अज्ञानी में उपभोग है, निवृत्तेर बोध हित, उसी बात को समझा रहे, निवृत्ति रीति निवृत्ते है बोध हेतुत्वात, निवृत्ति किसका हेतु है, बोध का हेतु है, बोध होने के कारण निवृत्ति हो गई, और न उपयोग क्या है, उसमें उपयोग का कोई उपयोग नहीं है, उपयोग अभाव इति शंकते। तो कहते बोध हेतुर निवृत्तिश्चेत इति तरही प्रवृत्ति अपि बुभुत्सा हेतुत्वात् उपयोगीवती। जैसे यहां पर निवृत्ति जो हुई है उस निवृत्ति में बोध हेतु बन गया ज्ञानी का, तो बोध हेतु होने के कारण न उपयोग अभाव, तो कहेंगे फिर उस उपयोग का अभाव हो गया, कोई उपयोग नहीं है, तो कहते नहीं है, उपयोग है, उसका निवृत्ति उपयोग हो गया, निवृत्ति के कारण क्या हो गया, ज्ञानी को फायदा हो गया, इसी तरह प्रवृत्ति का क्या फायदा होगा, तो वो भी क्या है, साधक के लिए बोध का कारण बन जाएगा। तरी प्रवृत्ति बोध सा हेतु, प्रवृत्ति किसका हेतु बन गई? ज्ञान का हेतु बन गई, जानने का हेतु बन गई। हेतुत्वात् उपयोगीवती, प्रवृत्ति भी क्या है? उपयोगी है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। ये होने के बाद कहता है ननु बुद्धस्य बुभुत्साभावात् प्रवृत्तेर अनुपयोगित्वम् पुनः शंकते। बुद्धस्य मतलब जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी की फिर दोबारा जानने में प्रवृत्ति है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रवृत्ति का कोई उपयोग नहीं है। किसी वस्तु को एक बार जान लिया, फिर उसी वस्तु को जानने में प्रवृत्ति का कोई उपयोग है? कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि लाभ तो एक ही बार होता है। किसी चीज को जानने के बाद उस जानने का लाभ एक ही है, उसको दोबारा जानने में प्रवृत्त होना उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दोबारा उसको जानने के लिए जाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, क्या ज्ञान होगा? वही दोबारा ज्ञान होगा। तो जो पहले प्रवृत्ति में ज्ञान हुआ था वही ज्ञान फिर दूसरी प्रवृत्ति में होगा, तो उस प्रवृत्ति का कोई मतलब है क्या? न वो तो जानने के लिए नहीं, तो लोगों को ज्ञान देने के लिए प्रवृत्ति। यहां तो खुद की बात चल रही है, ज्ञानी अपने विषय में उस आत्मा को जान लिया तो जानने के बाद और जानने के लिए प्रवृत्ति हुई थी उसकी, फिर उसी आत्मा को फिर जानने के लिए प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं है। क्यों नहीं होगी? उपयोग नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति होने का मतलब क्या है? एक ही विषय में दोबारा प्रवृत्ति का कोई मतलब नहीं है। क्यों? दोबारा प्रवृत्ति करेंगे तो हम क्या जानेंगे? वो उसी को जानेंगे। जैसे मान लीजिए
एक दफे जानने के बाद दूसरे की जरूरत
नहीं, दूसरी बार दोबारा प्रवृत्ति की जरूरत नहीं ना। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म देख रहा है, एक बार पिक्चर देख ली, फिर दोबारा पिक्चर देखने के लिए प्रवृत्त हो गया, उसको क्या दिखेगा भाई? कोई अलग दिखेगा क्या? मतलब उसकी दोबारे प्रवृत्ति का कोई फल निकला क्या? कोई फल नहीं है। जब जो कल देखा था वही दोबारा आज देखने के लिए जाएगा तो उसको और कुछ नया दिखता तब तो ठीक था, किंतु कल का ही आज दिख रहा है, मतलब आज जो प्रवृत्ति हो गई उसमें, उस प्रवृत्ति का फल क्या? कल वाला ही फल मिल गया, तो उसको कोई मतलब नहीं रहा। इसी तरह कह रहे ज्ञानी जो है वो उस ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति क्या है? अनुपयोगी होने के कारण वो दोबारा प्रवृत्ति नहीं करेगा। वही करे बुद्धस्य बुभुत्साभावात्, बुद्ध मतलब ज्ञानी को जिज्ञासा का अभाव होने के कारण क्या है? क्यों जिज्ञासा का अभाव है? क्योंकि वो जिज्ञासा अनुपयोगी है,
जानता है।
जिस विषय बुभुत्सा मतलब जानने की इच्छा, हाँ, जानने की इच्छा का अभाव होने से क्यों अभाव है? जानने की इच्छा का अभाव क्यों है? क्योंकि वो देख रहा है इसमें कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि एक बार जान लिया ना, जानने के बाद दोबारा जानने की इच्छा बेकार की। क्यों? क्योंकि दोबारा जानने की इच्छा करेगा और प्रवृत्त होगा तो क्या जानेगा? वही बात जानेगा दोबारा, तो फिर उसका उपयोगी नहीं ना हुआ, यही हो गया। बुद्धस्य बुभुत्सा अभावात् अर्थात जिज्ञासा का अभाव होने के कारण क्या है? प्रवृत्ति है अनुपयोगी, प्रवृत्ति का क्या है? उपयोग नहीं है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। तो कहते हैं प्रवृत्ति का अभाव है अनुपयोगी होने के कारण, तो उसके मन में शंका होती है कि जब उसके अंदर जिज्ञासा का अभाव है तो प्रवृत्ति उपयोगी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत, बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत, नाप्यसौ बुध्यते पुनः, नाप्यसौ बुध्यते पुनः, अबाधादनुवर्तेत बोधो न त्वन्य साधनात्, बोधो न त्वन्य साधनात्। इसके विषय में लोग हम लोग कल चर्चा करते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।